ठीक है, चार मिनट। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीन अस्तफा, अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا علما. तो इस क्लास में मिसाली बेटा का उन्वान पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में ही मिसाली बेटा पढ़ना हमने शुरू किया है, और इसमें जो है ना वो हम इंसान की फितरी ख्वाहिश होती है, इसको पढ़ के हमने मुकम्मल कर लिया था। और बात कहाँ पर ख़त्म हुई थी कि लड़की का बिगड़ना खानदान की बदनामी, ठीक है, कि लड़का बिगड़ जाए तो लड़के की बदनामी होती है, खानदान की कोई ऐसी खास तौर पे बदनामी नहीं होती, होती भी है लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो उतना खानदान की बात नहीं करते लड़का बिगड़ने के ऊपर, लेकिन लड़की के बिगड़ने के ऊपर खानदान का नाम जो है वो सबसे पहले लिया जाता है। और इसकी मिसाल, इसकी जो दलील है वो कुरान अज़ीमुश्शान से मशायख हमारे दिया करते हैं कि भाई मरियम अलैहिस्सलाम को फौरन जो है ना वो पहली बात क्या कही लोगों ने जब उनके गोद में बैठ बच्चा देखा कि ये तुमने कैसे कर लिया, तुमने तुमने ये बेहयाई वाली हरकत और ये कैसे कर ली, तुम्हारा ना तो बाप ऐसा था ना तुम्हारी माँ ऐसी थी और तुम तो हारून की बहन हो, ठीक है, और ऐसा क्यों कहा लोगों ने, क्योंकि इसकी वजह कोई आपसे अगर हम पूछें क्विज के तौर पर होता है पिछली क्लास के बच्चों से, तो हम हमेशा सीरत क्लास में पूछते हैं आखिरी बात क्या हुई थी, तो आपसे भी कभी कभी पूछ लेना चाहिए कि क्या इसकी लॉजिक थी, क्या इसकी लॉजिक थी कि उन्होंने जो है वो या उख्ता हारून और मा कान अबू के मरा सऊ इन व मा कानत उम्मो की बगिया, ऐसा उन्होंने क्यों कहा जी, क्या बताया था लास्ट लास्ट टाइम, किसी को याद है? क्यों कहा उन लोगों ने ऐसे ऐसे एड्रेस क्यों किया मरियम अलैहिस्सलाम को? जी कोई भी नहीं, खुद ही सोच लें, पिछली क्लास की बात अगर ना भी याद हो फिर भी अगर अपने जहन से सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों ने ये जुमला और ये नस्बतें क्यों इस्तेमाल करी, नस्बत हाईलाइट करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, इससे तो कुछ बात समझ में नहीं आ रही मेरे, मैं हूं थोड़ा सा कुड़मगज, तो जरा और समझाना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो अच्छी फैमिली से थी, लड़की का बिगड़ना खानदान की बदनामी, माशाल्लाह, तो आपने तो वो हेडलाइन हेडिंग जो थी वो आपने दोबारा लिख दी, मर्द का हाथ होता है, नहीं इनमें से कोई भी जवाब जो है ना वो समझ में आने वाला जवाब नहीं। जी चले किताब पढ़ लें हम, हमारे यहाँ तो वैसे भी ओपन बुक, ओपन बुक क्विज होता है, आपने कभी यूनिवर्सिटी में कॉलेज वगैरह में दिया होगा स्कूल में, तो ओपन बुक क्विज है ना, तो किताब सामने अगर होगी तो पढ़ने, अगर नहीं है तो फिर सर्च कर लेंगे गूगल के ऊपर, कहीं ना कहीं मिल जाएगी शायद। क्या वजह थी कि उन्होंने ऐसी बात कही? उन्होंने मतलब वो जो लोग वहां मौजूद थे, जिनके पास मरियम अलैहिस्सलाम गई थी ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर के, उन लोगों ने, मैं मशायख की बात नहीं कर रहा कि मशायख ने ऐसी बात क्यों कही, ठीक है, उन लोगों ने मरियम अलैहिस्सलाम को ये बात क्यों कही जी? और आसान से जवाब है इसका, लेकिन ब्लैंक आउट हो जाता है ना इंसान कभी, मुझे लगता है आप सारे के सारे ब्लैंक आउट हो गए, क्योंकि इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि है कोई बहुत ही कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज को थोड़ी है। आपकी तरबियत तो ऐसे अच्छे लोगों ने की थी, हाउ कैन समवन फ्रॉम ए गुड फैमिली कमिट सच अ सिन? चले माशाल्लाह पहुंच गए आप लोग, लेकिन इसी को ज्यादा क्लियर टू अंडरस्टैंड करने के लिए, ज्यादा आसान समझने के लिए, अपने इन अल्फाज को थोड़ा सा अगर आप दूसरा यानी मनफी साइड पे बदलें, आपने पॉजिटिव साइड वाली बात करी है, माशाल्लाह अच्छी बात है, मनफी साइड कभी होता है ना भैया, आपको नेगेटिव से बात ज्यादा समझ में आती है, तो औरत का कैरेक्टर यूजुअली अच्छा एज्यूम किया जाता है। नहीं जी, अल्लाह ताला ने औरत को हया वाला बनाया है, बात तो यहाँ पे वालदैन की हो रही है ना, ठीक है। तो वो जो आप दोनों ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, हसान हनीफ साहब और जहीर साहब दोनों ने सही जवाब दिए हैं, लेकिन ज्यादा सही जवाब नहीं दिए। ज्यादा सही जवाब इसका ये होता कि तुमने, ए मरियम, तुमने ये जो हरकत करी है ना, ठीक है ना, ऑफकोर्स करी तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने तो यही अज्यूम किया, बदगुमानी करी कि तुमने जो ये हरकत करी है ना, ये अच्छे खानदान वाली लड़की नहीं कर सकती, ये तो गंदे खानदान वाली लड़की करती है। कितना मतलब कॉम्प्लिकेटेड बात है ना? नहीं, तो बहुत ही आसान तरीन बात है ये, ठीक है, ये जो हरकत है ना, ये गंदे खानदान की लड़कियां करती हैं, कुरैश के, तो जो सीरत की क्लास को फॉलो कर रहे हैं, तो कुरैश यानी सीरत की क्लास के अंदर भी कितनी मरतबा ये बात आई है, और तफसीर के अंदर भी जहां भी उस जमाने की बात होती है, अभी बल्कि फतेह मक्का के मौके के ऊपर, अभी जो सीरत सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली क्लास में फतेह मक्का पहुंच चुके हैं ना, अगली क्लास में इंशाल्लाह शायद ये बात हो जाए, ठीक है ना। नबी अलैहिस्सलाम ने जब औरतों से बैत ली, सफा के पहाड़ी पर बैठ करके मक्का मुकरमा की जो नई मुसलमान होने वाली औरतें थी उनसे बैत ली, तो उस बैत के अंदर क्या था कि तुम जिना नहीं करोगी, राइट? तो उसके ऊपर हिंदा ने क्या जवाब दिया था, हिंदा अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी और मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा मुहतरमा, हजरत हिंदा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने क्या जवाब दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई शरीफ औरत भी कभी जिना करती है? शरीफ औरत कैसे जिना कर सकती है? यानी जो गैर शरीफ औरतें होती हैं, यानी जो मुआशरे का जो लो तबका होता है, लोली तबका, गंदा तबका, राइट, जहां पर के घरों के अंदर बकायदा झंडे लगाती थी कि हम, मैं अवेलेबल हूं, आ जाओ, राइट, ये होता था मुआशरे के अंदर, प्रोस्टिट्यूट्स, राइट, तो ये हरकत तो प्रोस्टिट्यूट्स करती हैं, ये हरकत तो ऐसी गलीज किस्म की औरतें करती हैं, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा खानदान तो ऐसा नहीं है, राइट, तुम्हारा खानदान तो ऐसा नहीं है, तुमने ये काम कैसे कर लिया? भाई, एम आई नॉट एबल टू एक्सप्लेन माई सेल्फ? बात समझ में आई? अभी भी कुछ इश्काल हो, नहीं समझ में आई हो तो पूछ लें, ठीक है ना। इस आयत की क्या तफसीर है? इस आयत की ये तफसीर है कि ये गंदा अमल तो गंदे खानदानों की औरतें करती हैं, अच्छे खानदान की औरतें तो नहीं करती। तुम्हारा खानदान तो अच्छा था, हारून की बहन हो, तुम्हारे वालिद भी जो है वो नेक थे, तुम्हारी वालदा भी जो नेक थी वो गंदी कोई थोड़ी थी, बगिया कोई थोड़ी नहीं थी, ठीक है। तो हमारे मशायख फिर इससे क्या बात हमें समझाते हैं कि बच्चियों के मामले में बहुत एहतियात करो। एहतियात करने का मतलब क्या है? अच्छा, ये भी आप बताएं, अब आप लोग तो फेल हो गए ना पहले इम्तिहान के अंदर सारे के सारे तकरीबन, तो अब जो है ना वो जो फेल हुआ उसको छुट्टी नहीं मिलती, फिर उसको जो है ना दूसरा एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। तो क्या सवाल क्या था? मैं खुद बोली हूँ कि एहतियात करनी चाहिए। तो भाई क्या मतलब एहतियात करनी चाहिए? वालदेन को बच्चियों के मामले में और ज्यादा एहतियात करनी चाहिए, ठीक ठीक है ना, बच्चों के लड़कों के मामले में भी एहतियात करनी चाहिए, लेकिन लड़कियों के मामले में और ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। क्या मतलब, क्या मतलब एहतियात करनी चाहिए? ऐसे काम ना करें जिससे लोग बदगुमानी करें, आगे बढ़ें। और कोई और बताए क्या मतलब एहतियात करनी चाहिए? उनको लाड प्यार उनको ज्यादा, किसी बात में उनको टोकना नहीं चाहिए, किसी बात में उनको रोकना नहीं चाहिए, जो आए उनकी मर्जी वो उनको दे देना चाहिए, नाराज ना हो जाएं कि कहीं नाराज हो गई तो बाहर जाकर के कुछ गंदा फेल करके आ जाएंगी। ये मतलब है एहतियात करने का। अपने गुना औलाद में आते हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा जवाब दिया वैसे आपने, ठीक है ना। जिनकी बेटियां हैं उनको और भी ज्यादा अपने निगाहों की हिफाजत, अपनी सोचों की हिफाजत और अपने अपने माहौल की हिफाजत, कि वो खुद गंदे माहौल में ना जाएं, खुद जो है वो बेहयाई की चीजों को मत देखें, दूसरों की औरतों का मत देखें, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो। इंटरनेट के ऊपर काफिर औरत भी है ना, उसको भी मत देखें। क्यों? इसलिए कि अगर बाप जो है ना वो ये वाला गुनाह कर रहा होगा तो इसका असर उसकी बेटी में आएगा, इसका असर उसकी बेटी में आएगा। हम देखते हैं जिस घराने की कि बाप को जो है ना वो पर्दे की फिक्र नहीं होती, अपनी बीवी के पर्दे की फिक्र नहीं होती, बीवी को जो है वो अपने पर्दे की फिक्र नहीं होती, उसकी औलाद पर्दा नहीं करती, उसके लिए अजाब हो जाता है, उसके लिए अजाब हो जाता है चेहरा ढांपना, पर्दे में रहना। और असल में ये माँ बाप के गुनाह होते हैं, माँ बाप के गुनाह होते हैं जिनका असर अल्लाह ताला उसकी औलाद में डाल रहे होते हैं कि उसकी औलाद के लिए पर्दा करना मुश्किल हो जाता है। और जिस घराने के अंदर बाप को फिक्र होती है पर्दे की, माँ को फिक्र होती है पर्दे की, औलाद नेचुरली पर्दा करती है, उसकी तबीयत में अल्लाह ताला डाल देते हैं इससे मोहब्बत, पर्दे से मोहब्बत। छोटी भी होती है ना वो मर्दों में नहीं जाना चाहती, अबाया पहन करके, छोटी छोटी बच्चियां जो हैं वो अबाया पहन करके बाहर निकलेंगी, और बड़ी थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी, करीबुल बुलूग, बलागत अभी नहीं आई है, अभी बालिग नहीं हुई है, उससे बहुत पहले ही निकाब करना शुरू कर देंगे। ये माँ बाप की नेकी होती है, ये माँ बाप का पर्दा होता है, माँ बाप की हया होती है ये, ठीक है। तो सबसे पहले एहतियात किया, खुद एहतियात करें अपने आप, अपने अमल में और अपनी सोचों में। गंदी सोचें होंगी दूसरों के बारे में, दूसरों की औरतों के बारे में गंदी सोच होगी, इंसानों को नहीं पता चलेगा तुम्हारी सोच का, अल्लाह को तो पता चलेगा ना। अल्लाह ताला से अपनी सोचों को छुपा सकते हो? नहीं, वो तो आंखों की खयानत को भी जानता है, ठीक है ना। वमा तुख्फि सुदूर, और जो दिलों के अंदर छुपे हुए राज है ना उनको भी अल्लाह ताला जानता है। तो अल्लाह ताला से तूने और तबीयत में किसने पैदा करना है, औलाद की तबीयत में ये गंदगी किसने पैदा करनी है? अल्लाह ने पैदा करनी है ना सजा के तौर पर, राइट। तो बदनजरी करते हैं और उसके ऊपर कोई अफसोस नहीं होता, उससे बचने की कोशिश नहीं कर रहे होते, ठीक है ना। याद रखें औलाद इस गुनाह में मुबतला होगी, ठीक है, ताकि वालिदैन का नाम बदनाम ना हो। और थोड़े इस बात को आप बताएं कि दूसरी एहतियात क्या करनी चाहिए, कि बच्चियां जो है ना वो गुनाह का और ये बेहयाई वाला काम ना करें। दूसरी एहतियात क्या करनी चाहिए? बच्चियों की तरबियत करते वक्त नेकी और हया की तालीम ज्यादा देनी चाहिए। ये एहतियात नहीं हुई, ये तो करने का भी काम हुआ, यानी ये तो आप एडिशनली काम करने को कह रहे हैं ना। एहतियात कहते हैं ना करना। एहतियात का मतलब क्या होता है? इज्तनाब करना, ठीक है ना, अवॉइड करना किसी चीज को। तो वो बताएं, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि ज्यादा क्या करना चाहिए, तालीम ज्यादा देनी चाहिए, अच्छे माहौल में रहें, राइट। बच्चियों को गंदे माहौल में भेजें नहीं, बच्चियों को गंदे दोस्तों के साथ उठने बैठने ना दें, बच्चियों को जो है वो गैर मुहतात लोगों से दोस्ती मत बनाने, गैर मोहताज बच्चियों से रोज दोस्ती ना बनाने दें, राइट। जिन घरानों की बच्चियां जो हैं वो फिल्में देखती हैं, जिन घरानों की बच्चियां जो हैं वो डाइजेस्ट के अंदर ये मुआशके वाले नौ नौ ये कहानियां पढ़ती हैं, राइट, अपनी बच्ची को उनके पास मत छोड़ें। हाँ, मजबूरन अगर करीबी रिश्तेदार हैं उनसे मिलना जो है वो लाजमी है तो बस वाजबी, यानी जितना बस बेर मिनिमम मुलाकात करें और यानी जो ओवरनाइट स्टे होता है या लंबे कोई प्रोग्राम्स होते हैं बाहर जा करके, है ना, वो बच्चियां जो हैं वो बाहर जा रही हैं जी, कहीं पे कॉफी शॉप में बैठ करके कॉफी पियेंगी या कहीं जा करके डिनर करेंगी, बेशक पर्दे में ही जा रही हूँ, लेकिन अगर वो लड़की जिसके साथ आपकी बेटी की दोस्ती बन रही है, वो लड़की अगर गंदी सोच रखती है, गंदी चीजें पढ़ती है, गंदी चीजें देखती है, उससे आपकी बेटी के अंदर ये गंदी ख्यालात ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है ना, गंदे ख्यालात ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। और फिर तीसरी चीज क्या कि भाई स्कूल कॉलेज में जो माहौल है को एजुकेशन में तो गलाजत ही गलाजत है, पूरी की पूरी खुली गलाजत है, को एजुकेशन में खुली गलाजत है, ठीक है ना। वहां पे लड़के भी होंगे, वहां पे मर्द भी होंगे, वहां पे टीचर भी होंगे, और टीचर्स तो और ज्यादा अब्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को, है ना। टीचर्स जो होते हैं ना, इस गंदे माहौल वाले टीचर्स, ये तो स्टूडेंट्स को और ज्यादा अब्यूज कर रहे होते हैं। अभी इतना बड़ा वाकया आया है बहावलपुर यूनिवर्सिटी का, राइट, पढ़े उस वाकये को, अभी चंद महीने पुरानी बात है, और कई यूनिवर्सिटीज में इस तरह के वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो को एजुकेशन के अंदर तो गलाजत खुली हुई होती है, लेकिन इवन इवन जहां पे को एजुकेशन नहीं भी होती वहां पर भी छुपी हुई गलाजत मौजूद होती है, और उसके भी कितने केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, कितने केसेस, इवन यानी गर्ल्स कॉलेजेस के अंदर, ठीक है। तो क्या ख्याल है, गलत कह रहा हूं, बताएं जी। नहीं, आप गलत कह रहे हैं, आप तो बस ऐसी खामखा जो है ना वो हर चीज के पीछे पड़ जाते हैं, आप तो ऐसी खामखा जो है ना वो क्या कहते हैं इसको, हर चीज में ना जो है ना नेगेटिव चीज को देखने वाले, पॉजिटिव चीज तो आपको नजर ही नहीं आती है। और भाई पॉजिटिव जरा दिखाएं तो सही ना, फिर हमें नजर भी आ जाएगी, हमें तो नहीं नजर आती, आप दिखा दें, आप दिखा दें ना, हमें तो नेगेटिव नजर आती है तो हम नेगेटिव ही बात करेंगे ना, पॉजिटिव कहीं नजर आती हो तो दिखाएं फिर, ठीक है। बहरहाल आंखें बंद करके जो है ना वो अपने आप को धोखे में उतरा रखना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हर बंदा कर सकता है। तो माहौल अच्छा, अपने घर का भी माहौल अच्छा रखें, अपने नफ्स का माहौल भी अच्छा रखें, यानी खुद सबसे पहले एहतियात करें, पर्दे की पाबंदी करें, अपने आंखों की हिफाजत करें, अपने कानों की हिफाजत करें मौसीकी से, राइट, अपने जहनों की हिफाजत करें, अपनी बातों की जुबान की हिफाजत करें कि गैर महरम से जो है ना वो बिला तकल्लुफ होकर के और बिला जरूरत जो है वो बातचीत करना, ये सारी जो है ना वो जिना के मुकदमात होते हैं, ये सारे जिना के मुकदमात होते हैं। तो सबसे पहले अपनी एहतियात, फिर उसके बाद जो है वो मिलने वाली दूसरे जो अपने कजन्स होते हैं बच्ची के जो है वो, चाहे फीमेल कजन्स ही होती हैं, तो उनके साथ एहतियात कि किस किस्म की वो लड़कियां हैं, उनके साथ ये उठना बैठना इसके लिए सही है कि नहीं है। और तीसरी चीज जो है वो ये जो इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन जो बनाई हुई है ना, लाजिम व मलजूम, फर्ज से भी ज्यादा बड़ी फर्ज, ठीक है, ईमान से भी ज्यादा अहम जो है वो कॉलेज एजुकेशन जो है वो बनाई हुई है, ठीक है। तो वहां पे सोच समझ लिया करें कि आप किस माहौल के अंदर बच्ची को भेज रही हैं या भेज रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, मगरबी मुआशरा और कुफर की कानून साजियां, सोच रहे हैं कुफर की कानून साजियां क्या कह रहे हैं हजरत, राइट। तो फरमाते हैं कि दुनिया के बाकी मुआशरों को देखें तो आपको बहुत ऊंच नीच मिलेगी, क्योंकि वो तजुर्बात पर मबनी मामले होते हैं, लिहाजा वो धके खाते हैं, ठीक है ना। हजरत ने बड़ा लाइटर ओपिनियन लिया हुआ यहाँ पर, तजुर्बात से मबनी मामले होते हैं लिहाजा वो धक्के खाते हैं, कभी एक फैसला कर लिया फिर वक्त ने बताया कि गलत था, फिर इसको बदल के दूसरा फैसला कर लिया, तो ये जितने इस किस्म के इंसानी बनाए हुए कानून हैं ये वक्त के साथ नाकाम हो जाते हैं, ठीक है। आज जो है ना वो मूड बन गया है वो आप लोगों से क्विज करने का, ठीक है। तो एक और क्विज क्वेश्चन, ठीक है, कि हजरत ने जो ये बात कही है ना कि वो तजुर्बात पर मबनी मामले होते हैं लिहाजा वो धक्के खाते हैं, तो इस फकीर ने ये बात क्यों कही कि हजरत लाइटर ओपिनियन ले रहे हैं वेस्टर्न सोसाइटी के बारे में, क्या मतलब है यहाँ पर, ठीक है। चलें बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको, इतने आसान सवालों के जवाब आप दे नहीं सकें तो इतनी मुश्किल सवाल का कहाँ कहाँ से जवाब देंगे। तो तजुर्बात पर मबनी मामले होते हैं लिहाजा धक्के खाते हैं, हजरत यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि वो अपने मुआशरे को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है ना, वो बेहतर से बेहतर तर अपने मुआशरे को बनाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि अकल से फैसला करते हैं, बस अपनी महदूद इंसान की जो अकल है या इंसान का जो महदूद तजुर्बा होता है उसकी बुनियाद पर फैसला करते हैं, वही से गाइडेंस नहीं लेते, खालिक से गाइडेंस नहीं लेते, खालिक के रसूलों से गाइडेंस नहीं लेते, इस वजह से धक्के खाते हैं। इंप्रूवमेंट की यानी जेन्युइनली इंप्रूव करना चाह रहे होते हैं लेकिन अकल परस्ती की वजह से धक्के खा रहे होते हैं और वो उनके उनके तजुर्बात जो होते हैं वो नाकाम हो रहे होते हैं। ठीक है, दिस इज ए लाइटर ओपिनियन। व्हाट इज द रियल ओपिनियन जो कि हजरत ने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है लेकिन और जगहों पर मेंशन किया हुआ है? ठीक है, हमें पता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो असल ओपिनियन, असल असल क्या क्या हो रहा होता है इस कुफर के मुआशरे के अंदर, ठीक है, जहां पर ह्यूमन रिलेशनशिप्स की बात हो रही होती है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स की, ठीक है, ब्रिजेस को इंप्रूव करने के लिए, वो ब्रिजेस को कंस्ट्रक्शन के लिए कहां से वो वही का ओपिनियन लेकर के, तो उसके अंदर वो ट्रायल एंड एरर कर करके जो है वो अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी को जो है वो इंप्रूव कर रहे होते हैं। ठीक है ना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस एंड यानी मेनी अदर थिंग्स, ठीक है ना, लाइक मेटीरियल। ठीक है, हम तो यहाँ पर ह्यूमन रिलेशनशिप्स की बात हो रही है। इसका जवाब जो है ना, फिर आपने बिल्कुल माशाल्लाह सही दिया, बिकॉज दे डू दीज ऑन पर्पस, दे डोंट वॉन्ट एनी गुड फॉर ह्यूमन बींग्स, दे डोंट वॉन्ट एनी गुड फॉर ह्यूमन बींग। वाई डू दे नॉट वॉन्ट गुड फॉर ह्यूमन बींग्स? वाई वाई डू दे नॉट वॉन्ट गुड फॉर ह्यूमन बींग्स? ठीक है ना, इसलिए कि असल में तो नफ्स शैतान की पैरवी होती है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अपनी गाइडेंस जो है वो रहमान से और रहमान के रसूलों से तो ली नहीं होती है। उनका शेख कौन होता है? रसूल तो उनका शेख है नहीं, राइट, ईमान वाले तो उनके शेख हैं नहीं, तो जिसका शेख ईमान वाला नेक बंदा नहीं होगा तो उसका शेख कौन होगा? उसका शेख शैतान होगा। और शैतान क्या अमेरिका का दुश्मन है? यानी नहीं, सॉरी गलत तरतीब बोल दी, शैतान क्या पाकिस्तान का दुश्मन है? शैतान क्या सऊदी अरब का दुश्मन है? शैतान क्या अरबों का दुश्मन है? शैतान क्या हिंदुस्तानियों का दुश्मन है? किसका दुश्मन है शैतान? हिंदुस्तानियों का, अरबों का, पाकिस्तानियों का, सऊदियों का? शैतान बनी नौए इंसान का दुश्मन है, इंसानियत का। तो क्या अमेरिका वाले इंसान नहीं होते? तो क्या यूरोप वाले इंसान नहीं होते? राइट, तो वो यूरोप वालों के का खैरख्वाह कैसे हो गया? क्या वो इंसान नहीं होते? क्या वो आदम अलैहिस्सलाम के औलाद नहीं होते? तो यूरोप और अमेरिका वालों का वो खैरख्वाह कैसे हो सकता है? जितना वो बदख्वाह हिंदुस्तान और पाकिस्तान वालों का है ना और अरब वालों का है ना, उतना ही बदख्वाह जो है वो उनका है, क्योंकि उसने तो सबको डुबोने की कसम खाई हुई है। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना वो इनसे जो ह्यूमन रिलेशंस के मामले में और ह्यूमन सोसाइटी के बारे में जो तजुर्बात करवाते हैं ना, वो इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं करते ये लोग, वो बेसिकली बेड़ा गर्क करने के लिए कर रहे होते हैं। उन्होंने सबसे पहला बेड़ा गर्क अपना किया है, हमारा तो ये बाद में करने के लिए आए हैं, इस बात को जरा घोल के पी रहे हैं, तब बात बनेगी, तब बात समझ में आएगी, दुनिया तब समझ में आएगी। दुनिया ही नहीं समझ में आएगी उस वक्त तक, दुनिया के मामलात ही उस वक्त तक समझ में नहीं आएंगे जब तक जो है ना वो इस उसूल को नहीं आप समझ लें कि शैतान ने सबसे पहले बेड़ा गर्क जो है वो ना मानने वालों का किया, रसूलों को ना मानने वालों का किया, सबसे पहले अमरीका, यूरोप और जितने भी काफिर हैं। मुसलमानों को तो उसने बाद में फोकस किया है, जो मुसलमान वर्ल्ड जो नबी अलैहिस्सलाम को मानने से जो है वो शैतान से बड़ी हद तक महफूज हो चुकी थी, बड़ी हद तक महफूज हो चुकी थी, क्योंकि मानते थे नबी अलैहिस्सलाम को, अल्लाह के महबूब को, तो इजियर थिंग्स फर्स्ट, है ना, आसान चीज को जो है वो आप पहले एड्रेस करते हैं, अकलमंद होंगे तो फिर आसान चीज को पहले करेंगे, बेवकूफ होंगे तो मुश्किल चीज को पहले एड्रेस करेंगे। शैतान जो है ना ये बेवकूफ नहीं है, है ना, आलिम भी है, आरिफ भी है और आबिद भी है, सिर्फ आशिक नहीं है, बाकी सब है। तो इसने पहले आसान लोगों को एड्रेस किया जो नहीं मानने वाले थे, जिन्होंने पहले ही इसको अपना शेख बनाया हुआ था, फिर बाद में जो है ना वो मुसलमानों की तरफ आया है, और अब जो है ना वो वही मॉडल जो कि वहां पे वो पहले कामयाबी से इस्तेमाल कर चुका है, वही मॉडल जो है वो आपके सऊदी अरब के अंदर और पूरे के पूरे अरब वर्ल्ड के अंदर और आपके पूरे एशिया के मुसलमान कंट्रीज के अंदर और अफ्रीका के मुसलमान कंट्रीज के अंदर एग्जैक्टली वही मॉडल अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हजरत ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ये तो बहुत ही सॉफ्ट अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जो कि उनके ब्रिजेस और बिल्डिंग्स और दूसरी टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरे उतरते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसकी एक बड़ी मिसाल आगे क्या है? ओल्ड एज होम्स का क्याम, ओल्ड एज होम्स, ठीक है ना, बूढ़ों बूढ़ों का जो 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 रहने का होता है। तो फरमाते हैं कि एक ऐसा वक्त भी आया कि कुफर ने यह फैसला किया। कुफर में कौन है सबसे बड़ा कुफर काफिर कौन है? शैतान, ठीक है ना, ये अल्लाह ताला की बात मानने से उसने इनकार कर दिया। तो एक ऐसा वक्त भी आया कि कुफर ने फैसला किया कि नौजवान बच्चों को अपनी जिंदगी गुजारने की आजादी देनी चाहिए, और ये जो माँ बाप हर वक्त उनके सर पर सवार हैं उनका ताल्लुक अलग करना चाहिए। लिहाजा उन्होंने कहा कि अगर कोई माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे तो हुकूमत उनको ओल्ड एज होम्स यानी बूढ़े लोगों के रहने की खसूसी जगहों में रखेगी और उनका खर्चा करेगी। माँ बाप के लिए बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारें। इस तरह करने से बच्चे माँ बाप से बिल्कुल आजाद हो गए तो इट वॉज फॉर द गुड और फॉर द वर्स, ठीक है ना, इट वॉज फॉर द बेटर और फॉर द वर्स, ठीक है ना। आजादी, ये कौन सी आजादी थी? इज देयर एनीथिंग कॉल्ड आजादी इन दिस दुनिया? इस दुनिया के अंदर आजादी नाम की कोई चीज हो सकती है? आजादी का मतलब पहले समझेंगे तब जो है वो इस बात का जवाब दे सकेंगे। आजादी का मतलब क्या होता है? आजादी का मतलब ये होता है कि यू आर नॉट अंडर एनीवनस इन्फ्लुएंस, है ना, नो वन कैन कंट्रोल यू, यू आर इंडिपेंडेंट, आजाद हैं, आप अपनी मर्जी से फैसला करते हैं, जो आपके नफ्स में चीज आती है आप उसको उसके मुताबिक काम कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या ख्याल है, ये आजादी इस दुनिया में मुमकिन है? ये आजादी इस दुनिया के अंदर मुमकिन है ही नहीं, मुमकिन ही नहीं है, किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। लेकिन एक जगह ऐसी होगी कि जहां पर ये मुमकिन होगी, वो कौन सी जगह होगी भाई, जहां पर ये आजादी मुमकिन होगी? वो जन्नत। एग्जैक्टली, इस दुनिया के अंदर देर इज नो सच थिंग एज आजादी। जन्नत के अंदर अल्लाह ताला, जिसको हमारे हजरत बड़ा प्यारा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह ताला हर ईमान वाले को जो जन्नत में दाखिल होगा ना, उसको एक छोटी सी खुदाई अता फरमा देंगे, छोटी सी खुदाई। खुदा जो होता है ना, वो किसी के कंट्रोल में नहीं होता, वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं होता, वो आजाद होता है, वो अपने अपनी मर्जी के फैसले कर रहा होता है। छोटी खुदाई देंगे, बड़ी खुदाई तो वो अल्लाह ही के पास रहेगी, जन्नती के पास कोई असल खुदाई की थोड़ी आ जाएगी। लेकिन वहां पर उसके नफ्स की ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी, जो उसने ना भी चाहा होगा वो भी उसका पूरा हो जाएगा, राइट। दुनिया के अंदर ऐसा नहीं होता, दुनिया में तो भाई वी आर अंडर इन्फ्लुएंस, वी आर अंडर कंट्रोल, वी आर बीइंग, यू नो, हमें तो मुतासर किया जा रहा है, कोई किसी तरीके से मुतासर कर रहा है, कोई किसी तरीके से मुतासर हो रहा है। हमारे पास सिर्फ इतनी आजादी है कि हम इससे मुतासर हो, राइट, हम यानी लेफ्टिस्ट से मुतासर हो कि हम राइटिस्ट से मुतासर हो, हम दाएं वालों से मुतासर हो कि हम बाएं वालों से मुतासर हो, ये है बस हमारा, हमारे पास इतनी सी चॉइस है, ना मुतासर होने की चॉइस हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो हजरत जो यहाँ पर लिख रहे हैं, तो असल में हजरत का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो इन्होंने किया है ना, ये करना क्या चाहते हैं, ये दरअसल माँ बाप के, जो उनके माँ बाप इवन काफिर वर्ल्ड के अंदर भी काफी हद तक बच्चों के अपने खैर ख्वाह होते हैं, ठीक है ना, वो चाहते हैं कि जी ये तकलीफ से बचे, इनको जो है वो हार्म ना पहुंचे, ना, एक खैर ख्वाही, बहरहाल एक मोहब्बत होती है, खैर ख्वाही होती है। इल्म गलत हो जाता है, इस वजह से वो यानी खैर ख्वाही के नाम पर जो है वो बदख्वाही कर जाते हैं, लेकिन खैर ख्वाही करना खैर ख्वाही ही चाह रहे होते हैं। तो इस प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट से जो कि माँ बाप ने प्रोवाइड करना था, इनसे उनको निकालो ताकि वो एक्सपोज हो जाएं, और फिर जो गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है ना, जो के सुप्रीम गवर्नमेंट इनकी जो होती है वो शैतान की गवर्नमेंट होती है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जो है वो, जब जमाने दज्जाल शुरू हुआ, तो जो दज्जाली निज़ाम है वो गवर्नमेंट्स को कंट्रोल कर रहा होता है। तो जो इनकी यूथ है ना, वो 18+, दैट्स इट। ये तो हजरत ने फरमाया ना कि वालदैन जो है वो बूढ़े हो जाएंगे तो उनको ओल्ड एज होम में डाल देंगे, नहीं, बूढ़े तो होने के बाद उनको ओल्ड एज होम में डालेंगे ना, ताकि उनकी खिदमत की जिम्मेदारी से जो है ना ये सो कॉल्ड आजाद हो जाए, उनकी खिदमत की जिम्मेदारी से आजाद हो जाए, उनकी जो है वो यानी खाना पिलाना और ये सारी चीजें, ठीक है ना। लेकिन आजादी तो वहां पर सो कॉल्ड जो जिसको आजादी कहते हैं वो तो 18 की उम्र में है ना, फिर उसके बाद पेरेंट्स उसको कुछ भी नहीं कर सकते, और अब तो वो चीज और भी नीचे आ रही है एज, ठीक है। तो गवर्नमेंट्स वांटेड टू टेक ओवर, ताकि वो फिर अपने हिसाब से जो चाहें करवाएं, ठीक है ना, उनको जो है वो यानी बिल्कुल ही यानी किसी किस्म की प्रोटेक्शन से महरूम कर देना, ठीक ठीक है। तो इस वजह से जो है ना, ये हमारा एक बहुत बड़ा जो एक अनफॉर्चुनेटली गुलामी की जहनीयत है ना हमारी, कि जैसे आई थिंक पिछली क्लास में या उससे पिछली क्लास में भी इस टॉपिक पर बात हुई थी कि हमारा अल्लाह पर तो एतमाद है नहीं, ठीक है ना, कि अल्लाह के वादे हैं, वो वादे जो हैं वो सच्चे हैं, अल्लाह ताला अपने वादों को पूरा करता है, अल्लाह ताला जो है वो जो अल्लाह ताला ने अपने बारे में कुरान मजीद में बताया है वो बिल्कुल सच है और हमें उसके ऊपर एतमाद करना चाहिए। नहीं, अल्लाह ताला के ऊपर तो हमें एतमाद है नहीं, हमें किसके ऊपर एतमाद है, हमें जो है ना वो शैतान के ऊपर एतमाद है, शैतान के ऊपर, इबलीस के ऊपर। क्या एतमाद है हमारे इबलीस के ऊपर, कि वो हमें नहीं बहका सकता और हमारे बच्चों को नहीं बहका सकता, ठीक है। शैतान इबलीस जो है ना, ये ना हमें बहकाएगा, हाँ इतना एतमाद नहीं है उसके ऊपर, यानी दीनदार मुसलमानों की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना, जो शैतान को रिजेक्ट नहीं करते, वर्बली रिजेक्ट नहीं करते शैतान की एग्जिस्टेंस को, तो उनका एतमाद शैतान पे क्या है, कि शैतान है वो इंसानों को बहकाता है, लेकिन दूसरे इंसानों को बहकाता है, मेरे दुश्मनों को बहकाता है, बहू कहेगी मेरी सास को शैतान बहकाता है, शौहर कहेगा मेरी बीवी को शैतान बहकाता है, बीवी कहेगी मेरी मेरे शौहर को शैतान बहकाता है, ठीक है ना, वो भी अच्छे अंदाज में नहीं, कि नहीं मेरा शौहर बड़ा अच्छा है वो तो शैतान ने उसको बहका दिया, नहीं इस तरह से नहीं, बल्कि वो तो शैतान का दोस्त है इस तरह से, ठीक है, लेकिन मुझे को थोड़ी बहका सकता है वो, मुझे क्यों बहकाएगा, मुझे मेरे साथ उसकी कोई दुश्मनी है जो मुझे बहकाएगा, मेरी औलाद के साथ उसको कोई दुश्मनी है जो मेरी औलाद को बहकाएगा, तो इस वजह से कोई मसला ही कोई नहीं, आराम से रहो, है ना, जहां भेजना है वहां भेजो, शी विल बी फाइन, ही विल बी फाइन, शैतान जो है वो थोड़ी बहकाने की कोशिश करेगा, तो हमारा एतमाद शैतान के ऊपर है, ठीक है ना। अब जाहिर है शेख साहब शैतान है तो फिर एतमाद क्यों नहीं होगा, शेख साहब के ऊपर एतमाद तो होना चाहिए ना, जिसका कोई शेख नहीं होता उसका शेख शैतान होता है, तो शेख साहब के ऊपर तो एतमाद मुरीद साहब का होना जरूरी है, वरना तो फिर वो फैज का रास्ता बंद हो जाता है ना, शैतान से भी तो एक फैज आता है ना, तो उसका रास्ता बंद हो जाएगा, इस वजह से एतमाद जरूरी है शैतान के साथ। अच्छा, शैतान के साथ एतमाद के बाद दूसरा दर्जा आता है, जो शैतान के रास्ते पे चलने वाले होते हैं ना, उन पे भी बड़ा हमें एतमाद है, उन पे भी हमें बड़ा एतमाद है, जो शैतान के रास्तों को इख्तियार करके तरक्की कर करके दुनिया में आगे बढ़ चुके हैं, हमें उनके ऊपर बड़ा एतमाद है, इस वजह से ना हम उनके बारे में ना कोई नेगेटिव थिंकिंग को बड़ा खराब समझते हैं, कि वो तो बड़ा, यानी वो क्यों, वो भला क्यों, यानी साजिश करेंगे, वो भला क्यों जो है वो कोई गलत काम करेंगे, क्या क्या पड़ी है उनको गलत काम करने की, जैसे यानी हम भी बचपन में ऐसे ही समझते थे कि अमेरिका को क्या पड़ी है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई काम करे, है ना, मौलवी लोग कहते रहते थे, हम कहते नहीं अमेरिका इतना बड़ा है, अमेरिका इतना अच्छा है, क्योंकि हॉलीवुड की फिल्में देख देख करके जो है वो आप अमेरिका के आशिकी बनते हैं फिर उसके बाद, राइट, तो अमेरिका इतना अच्छा है, इतना बड़ा है, उसको क्या जरूरत पड़ी है पाकिस्तान के साथ जो है वो खामखा गए, पाकिस्तान की हैसियत क्या है, छोटा सा गंदा सा मुल्क है ना, वो इतना बड़ा, इतना अजीम शान, आलीशान, उनको दुनिया में कोई और नहीं मिला सवाए पाकिस्तान के, तो फिर थोड़े अरसे में जब ये अल्हम्दुलिल्लाह ये वो बार छटा, ये चीजें अल्हम्दुलिल्लाह दीन की तरफ थोड़ा आए, समझ में आई बातें, मशाइख से भी राबता हुआ, तो ये जब वो बार हटा तो फिर हमने दूसरों को भी समझाना शुरू किया, तो दूसरे लिटरली पीपल एक्चुअली सेड इट टू मी, ठीक है ना, कि पाकिस्तान की क्या हैसियत है कि अमेरिका जाए पाकिस्तान के बारे में फिक्रमंद हो, ठीक है, तो और बहुत ही यानी संजीदगी से उन साहब ने जो है ना वो डिफेंड किया इस बात को, कि नहीं अमेरिका को क्या पड़ी हुई है, पाकिस्तान की हैसियत क्या है, तो फिर जो है ना मैं, मुझे याद है कि 2007 की गालबन बात होगी या 8 की बात होगी, ठीक है, तो हम जो है ना वो चेज सुपर स्टोर में थे कराची, जो कराची वाले हैं वो इस बात को से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो बहादुराबाद के पीछे जो बड़ा सा एक चेज डिपार्टमेंटल स्टोर, पता नहीं है कि नहीं है, तो 2007 की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे मैं जो है ना वो अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग कर रहा था, तो वो जो मैगजीन स्टैंड होते हैं ना उनके ऊपर न्यूज वीक पड़ा हुआ था, न्यूज वीक, आई एम श्योर न्यूज वीक था या टाइम था, टाइम मैगजीन, तो उसके ना फ्रंट पेज के ऊपर जो है ना वो उन्होंने पूरा बड़ा सा टाइटल लगाया हुआ था, द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड इज नॉट नॉर्थ कोरिया, इट्स नॉट ईरान, इट्स नॉट तीसरा पता नहीं कौन सा था, सोमालिया या पता नहीं, तीन कंट्रीज के नाम लिख के नीचे लिखता है इट इज पाकिस्तान, द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड इज पाकिस्तान, कौन, न्यूज वीक, और न्यूज वीक क्या है, इट इज द माउथ पीस ऑफ द US गवर्नमेंट, ठीक है, तो ये उनका माउथपीस है। तो वो भाई आप तो हम, लेकिन हमें बड़ा एतमाद है कि नहीं, वो कोई गंदी बात सोच ही नहीं सकते। वो तो इतने अच्छे लोग हैं, इतने गोरे हैं और इतने यानी साफ सुथरे रहते हैं, और वो कहाँ से कोई गंदी बात हमारे बारे में सोच सकते हैं। ऐसा नहीं है भाई, पहले तो अपने सोच को फिक्स करें ना। ये गुलामी, ये जो है ना, वो आपको घोल के पिलाई गई है, हमें घोल के पिलाई गई है, ठीक है ना, कि हम बहुत अच्छे हैं और तुम ही सारे के सारे खराब थे। डिवाइड एंड रूल, तुम लोग आपस में जो है वो मिलजुल करके रह ही नहीं सकते थे। ब्रिटेन तो आया और इसने जो है ना तुम्हारी इस जो जो बुराई थी उसका फायदा उठाते हुए अपनी अकलमंदी दिखाई, और तुम्हें जो है ना वो आपस में लड़वा करके जो है वो उसने तुम्हारे मुल्क के ऊपर कब्जा कर लिया, ठीक है। डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, किसके ऊपर ब्लेम जाता है? हिंदुस्तानियों के ऊपर, पूरा का पूरा ब्लेम हिंदुस्तानियों के ऊपर चला जाता है। और अकलमंदी और जहानत किसके किसके झोली में आती है? बर्तानिया के, है ना। कभी आपने इस नजर से देखा, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने पहले बात सुनी भी है ये, ठीक है। तो डिवाइड एंड रूल के अंदर भी सारी बुराई आपकी, और जहां पर अंग्रेज जज का जिक्र आता है आपके, इवन मौलवियों के वाकयात के अंदर भी, अंग्रेज जज, ओ अंग्रेज जज का तो ऐसे जिक्र होता है कि जैसे उससे ज्यादा जो है ना वो यानी प्रोफेशनल और जो है ना वो डिसेंट इंसान जो है वो दुनिया में कोई और था नहीं। उसने कितना जबरदस्त फैसला दिया कि आज जो है ना वो मुसलमान हार गए और इस्लाम जीत गया। वाह वाह वाह, क्या बात है जी, कितना अच्छा इंसान था ही, यू नो, इंसाफ का पैकर, है ना, और जो है वो सच्चाई को एम्ब्रेस करने वाला और हक बात करने वाला। कौन है भाई? अंग्रेज जज, राइट, ठीक है ना। तो हमें अंदाजा नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है इतने सालों से, हमें अंदाजा कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और बात याद आ गई, अभी क्लास में कितना टाइम लग गया? हाँ, 2 मिनट रह गए। अभी पिछले दिनों ना किसी डॉक्टर साहब ने साजिश से जो है वो एक वीडियो शेयर करी ना, अब वो मैं पूरी देख नहीं सका हूँ, लेकिन उसका कैप्शन क्या था कि पता नहीं कोई बहुत बड़ा कोई डॉक्टर है ना, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का, और बहुत जबरदस्त किस्म का ना, इस किस्म का कोई बहुत ही हाईली अकॉम्प्लिश किस्म का डॉक्टर है। तो वो क्या यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने, है ना, यूरोपियन लिखा हुआ था, मैंने उसको अब गौर से देखा नहीं है, अभी तक टाइम नहीं मिला अलहमदुल्ला। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि वो यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने जो है ना वो बयान दे रहा है, और बयान थोड़ा सा मैंने सुना था बस। तो वो क्या था कि जी ये जो वैक्सीन्स लगाई गई है ना, mRNA वैक्सीन्स, ठीक है, तो ये सारी की सारी वैक्सीन जो है ना, इन्होंने बहुत ही यानी क्या कहते हैं, हार्ट डिजीजेस जो है ना वो बहुत ज्यादा फैला दी हैं दुनिया के अंदर, और सडन डेथ्स जो है वो इंतहाई बढ़ गई हैं, बेशुमार लोग जो है वो सडन डेथ्स के अंदर मर चुके हैं, और इससे जो है वो क्लॉटिंग हो जाती है, और ये हो जाता है, वो हो जाता है, ठीक है ना, और फिर जो है ना वो आखिर में, यू नो, इट कैन बी यू, इट कैन बी एनी वन इन योर इमीडिएट फैमिली, आखिर में वो ये कह रहा है, ठीक है। तो अब इस वीडियो को देख करके, है ना, कि भाई यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने जो है वो इतना बड़ा डॉक्टर जो है वो इस किस्म का बयान दे रहा है कि मैं तो हूं ही इस फील्ड का, और मैंने इतने पेशेंट्स ट्रीट किए हैं, और मैंने इतनी कोशिश करी लेकिन किसी को फायदा नहीं हुआ जिन्होंने mRNA वैक्सीन लगाई हुई थी। तो अब हमारे जहन में क्या ख्याल आता है, ये आप बता दें। अगर इस वीडियो को अगर आप देखते, मैंने थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है, तो आपके जहन में क्या ख्याल आता है, ये बताएं जी। जी आप सब सोच रहे हैं कि सच को एनकरेज कर रहे हैं, फियर, ठीक है, आखिर में जो बात उसने कही उससे फियर, ठीक है, पार्लियामेंट इज एनकरेजिंग ट्रूथ, ट्रूथ, सच को एनकरेज कर रहे हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट इज एनकरेजिंग ट्रूथ। अच्छा, और बताएं। अगर कोई एक दो और जवाब आ जाए तो उसके बाद फिर यार जस आगे बढ़ेगा। इससे चले, टाइम भी खत्म हो गया, मुझे भी और काम से जाना है, अपनी बात को वेट कराने के लिए उन्हीं के सामने जा रहे। चले, ये भी एक अच्छा जवाब है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच। अच्छा, व्हाट अबाउट ये, पहली बात तो ये है कि ये जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का जो इतना बड़ा चैम्पियन है, तो ये तहकीक जो है वो 2 साल पहले नहीं कर सकता था? ठीक है। पछतावे क्या होवत, चिड़िया चुग गई खेत, वी कैन ट्रस्ट देम, ट्रस्ट देम, राइट। हमारे जहन में बात आता है कि देखो, हम तो पहले ही कह रहे थे, हम तो खैर नहीं कह रहे थे, लेकिन थोड़े से जो है ना वो दीवाने लोग कह रहे थे कि ये सारा का सारा जो है ना ये ड्रामा है, और ये वैक्सीन जो है ना ये तो इनके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, और जो फाइजर है ये तो पहले ही उसके ऊपर $6 बिलियन जो है वो फाइन हुआ हुआ था, और इतनी अनट्रस्टेबल किस्म की जो 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 कंपनी थी ये, और उन्होंने तो पैसे बनाए हैं, और ये क्या, देखो सच खुल के सामने आ गया ना, बिल आखिर सच सामने आ गया ना, राइट। 2 साल लगे, 3 साल लगे, लेकिन बिल आखिर सच सामने आ गया, ठीक है ना। क्या हम ये नहीं सोच रहे इस वीडियो के बारे में जान करके कि बिल आखिर सच सामने आ गया, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत कि आपको क्या पता कि अब सच सामने आ गया है, अब जो सामने आया है ये सच है, ठीक है। या ये कि एक चीज होती है छोटा सच और एक होता है बड़ा सच, ठीक है ना। छोटा सच तो पहले से भी भाई साफ जाहिर था, अगर किसी को पहले नहीं समझ में आ रहा था तो वो अपने दिमाग का इलाज कराए, ठीक है ना। तो ये कोई नई बात तो नहीं लेकर के आए, ये पहली बात, ठीक है ना। अब सच सामने लाया गया है जी, ठीक है ना। थ्रू दिस दे आर गेटिंग योर कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट, एंड दे आर पुटिंग मोर फियर इन यू, और फियर से लोग ज्यादा मरते हैं। ये बात भी हम डिसमिस नहीं कर सकते कि फियर से लोग ज्यादा मरते हैं, ठीक है ना। और इतने तो कोरोना से उस वक्त भी नहीं मर रहे थे जितने की जो है वो कैंसर से मर रहे थे, जितने जो है वो हार्ट डिजीज से मर रहे थे, जितने जो है वो यानी दूसरी किस्म की जो ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं उनसे लोग मर रहे थे, लेकिन इट वॉज ऑल अ मीडिया हिप कि कम मर रहे हैं, लेकिन उसको आप जो है वो आधा पेज जो है वो हर न्यूज़पेपर का, हर दिन का न्यूज़पेपर जो है वो आप उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो खौफ फैलाना, लेकिन भाई इस बात को भी तो समझे ना कि ये पूरा का पूरा निज़ाम जो है ना ये कंट्रोल निज़ाम होता है। 2 साल पहले जो चीजें आ रही थी वो भी कंट्रोल के अंदर ही आ रही थी, जो नहीं आ रही थी वो भी कंट्रोल से आ रही थी, और आज जो ये साहब यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने बात कर रहे हैं, क्या ये जो है वो आजादी के साथ ये काम कर रहे हैं? इनको इजाजत मिली नहीं है कहीं से कि ये काम करो जा करके। अगर इनको इजाजत ना मिलती तो इनका तो बाप भी ये काम नहीं कर सकता था, ठीक है ना। इनकी तो अम्मा भी ये वाला काम नहीं कर सकती थी जो ये कर रहे हैं बड़े, और हम जो है वो बड़े खुश हो रहे हैं कि देखो सच सामने आ गया, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ट्रस्ट जो है ना, जो हमारा जो है ना वो ट्रस्ट इस सिस्टम के ऊपर यानी एक तरह से खत्म होता है तो दूसरी तरीके से ट्रस्ट बन जाता है, दूसरी तरीके से खत्म होता है तो इसी तरीके से ट्रस्ट बन जाता है। क्यों? इसलिए कि ये सिस्टम जो है ना ये कन्वेंशनल सिस्टम नहीं है, ये कन्वेंशनल ओल्ड एज सिस्टम नहीं है, ये दज्जाली सिस्टम है, दज्जाली सिस्टम। और दज्जाली सिस्टम जो होता है ना ये मजाक नहीं होता, ये वो नहीं होता जो आपको नजर आ रहा है, ये वो नहीं होता, ठीक है ना। 400 साल पहले जब यूरोप की कॉलोनियलिज्म नहीं हुई थी, उससे पहले दुनिया के अंदर दज्जाली सिस्टम नहीं था, हमारे बड़े यही समझे, और हमें हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह ये बात समझ में आती है, सारी चीजों को ऑब्जर्व करके यही बात समझ में आती है, उससे पहले दज्जाली सिस्टम नहीं था, ठीक है ना। ठीक है, लोग धोखा एक दूसरे को देते थे, क्योंकि शैतान तो हमेशा से शुरू से है, मतलब ठीक है ना, हमेशा तो खैर नहीं है, शुरू से है, जब से वे आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले से, तो शैतान का तो काम है धोखा देना। लेकिन दज्जाल तो आखिरी जमाने में आने वाला फितना था ना, जो कि शैतान का सबसे बड़ा मोहरा होगा, ठीक है। तो भाई ये कन्वेंशनल डेज नहीं है, ये आम डेज नहीं है, ये पुराना सिस्टम नहीं है, ये नया सिस्टम है। इसके अंदर आप जो है ना वो ऐसे लोगों के ऊपर, कम से कम जिनका कोई सनद नहीं है, कोई इनका बैकग्राउंड नहीं है, आप उनको अच्छी तरीके से जानते नहीं है, आप खाली इस मीडिया के बेसिस के ऊपर उनको जानते हैं, चाहे वो दाढ़ी वाले हो, चाहे वो टोपी वाले हो, चाहे वो मुसलमान हो, लेकिन आप तो उनके घर के हालात से वाकिफ नहीं है, आप तो उनकी जो है वो जाती जिंदगी से वाकिफ नहीं है। अब वो टोपी पहन के, दाढ़ी पहन करके, और जो है ना वो कोई इस्लाम के हक में बातें करना शुरू कर दें, आपको क्या पता कि वो किस नीयत से बात कर रहे हैं। और किस उनके जो 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 स्ट्रिंग्स हैं वो किसके हाथों में है, उनके मुल्क में बैठ करके, जिस मुल्क में हमारे सारे सियासतदान जाते हैं ना, राइट, हमारे जितने होते हैं भागे हुए किधर जाते हैं, एक ही तो मुल्क है, उम्मे कुलथूम है ना, यूके, एक ही तो मुल्क है। अब वहां पे बैठ करके यानी दीन के सबसे बड़े दाई जो है ना, वो दुनिया के अंदर जो है वो दीन की दावत फैला रहे हैं वहां बैठ करके, और कुफ्र या निजाम के खिलाफ जो है ना वो गालियां दे रहे हैं उनको, उनको बुरा भला कह रहे हैं, और उनके उनके खिलाफ जो है वो यानी जबरदस्त किस्म की बातें कर रहे हैं। किधर बैठ के बातें कर रहे हो भाई जहां पे आपके पाकिस्तान के सारे सियासतदान बैठे हुए हैं, जिन्होंने के सारी जड़ें काटी हुई हैं सबकी, ठीक है? तो याद रखा करें इन बातों को, और अल्लाह ताला से बहुत दुआ मांगने की जरूरत है कि अल्लाह, अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्का वरजुकना तबाअ व अरिनल बातिला बातिला वरजुकना इज्तिनाब। दुआ, और फिर उसके बाद दवा भी करनी पड़ती है, खाली दुआ से काम नहीं चलता। ठीक है, आगे इन्होंने क्या रखा है कि थ्रू दिस डे दे आर गेटिंग योर कॉन्फिडेंस इंटरेस्ट। कोरोना स्कीम के बाद दुनिया में हुकूमतों का कंट्रोल काफी मजबूत हुआ, तजुर्बा कामयाब हुआ, भले जितना सच बोलते रहें कोई फायदा नहीं है, कुफार का सच भी धोखा और चाल है। ठीक है, उनका कंट्रोल पहले भी था, लेकिन जो एक डिफरेंस आया है वो आपका सोशल मीडिया का डिफरेंस आया है, ठीक है ना, ये पहले इतना नहीं था, अब जो है ना यू आर इवन मैनी मैनी फोल्ड्स मोर डिपेंडेंट ऑन दिस, यानी जो आज जो कि कंप्लीटली आपकी पीछे से कंट्रोल सिस्टम है, आपका जो सोशल मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और ना जाने क्या क्या किस्म की इनकी टेक्नोलॉजीज हैं, इनके जरिए से सारी चीजें जो है मैनिपुलेट हो रही होती हैं, ये एक मेजर फर्क आया है, ठीक है ना। तो फितने दजाल दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, कल ये जिस इंटेंसिटी पर था आज ये उससे अगली इंटेंसिटी के ऊपर है, और आने वाले कल में ये उससे अगली इंटेंसिटी के ऊपर होगा, हत्ता कि वो वक्त आएगा कि अपने जब के दज्जाल जो है वो अपने मुकाम से बाहर निकल आएगा, ठीक है, उस वक्त तक इस सिस्टम ने तरक्की ही करनी है, इसने आगे ही बढ़ना है, ठीक है। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए, हम सबकी हमारे आने वाले नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमाए। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।